यही चाहता है कि वह लोक पसंद और प्रभु पसंद बनकर रहे। वैसे तो ये दुनिया रैन बसेरा है, हमारा मूल निवास स्थान परम धाम है, लेकिन इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते यहाँ रहते रहते हमारी इसमें आसक्ति हो जाती है। तो यह आसक्ति कैसे निकाले? ऐसे कौन से कर्म करें जिनसे हम परमात्मा के प्रिय बन जाएं? आइए देखते हैं इस एपिसोड में।
श्रीमद् भगवत गीता जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ इस संसार में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इस महान ग्रंथ में कर्म योग, निष्काम योग की जितनी सरलतम व्याख्या है उतनी कहीं और देखने को नहीं मिलती। गुह्यता भी है और गुह्यता इसलिए है कि जो लोग साधक हैं, जो ज्ञान और योग के मार्ग पर चल रहे हैं, वो ही इन गुह्य बातों को समझने में समर्थ हैं। तो हम 12वें अध्याय के अंतिम श्लोकों पर हैं, 19 और 20। 19वें श्लोक में फिर से बहुत सुंदर बात आ गई। भगवान कह रहे हैं, मुझे वे लोग बहुत प्रिय हैं, वे भक्त बहुत प्रिय हैं, जो निंदा और स्तुति को समान भाव से देखते हैं, जो मननशील हैं, जीवन निर्वाह चाहे जिस तरह भी होता हो, जो सदा संतुष्ट रहने वाले हैं, और रहने के स्थान में जो ममता और आसक्ति से रहित हैं, ऐसे लोग, ऐसे भक्तजन मुझे अति प्रिय हैं। और 20वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में कहा है कि ऊपर कही हुई इन सभी बातों को जो बहुत श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऐसी आत्माएं मुझे अति प्रिय हैं। तो ये जो चार बातें 19वें श्लोक में आ गई हैं, इन पर जरा हम चर्चा करें। निंदा और स्तुति में संभाव रखने वाले, मननशील, जीवन निर्वाह चाहे जैसे भी हो रहा हो उसमें संतुष्ट, और जिस स्थान पर हम रहते हैं उसमें हमारी ममता और आसक्ति न हो, ऐसा योगी परमात्मा को बहुत प्रिय है। क्योंकि ये स्थिति केवल योगियों की ही है, जो योगी नहीं है, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है, जो संसार में भौतिकता की लहर में लहराते हुए जीवन जी रहे हैं, वो तो शायद इन बातों को समझ भी नहीं पाएंगे, उनका ये विषय ही नहीं है। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, जो उसके प्रेम में मग्न होना चाहते हैं, जो उसके स्वरूप पर निरंतर स्थिर बुद्धि होना चाहते हैं, उनको ये बातें जाननी बहुत आवश्यक हैं। पिछले अध्याय में भगवान बार बार कह आए हैं, जो मन और बुद्धि को कंट्रोल करे, जो मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दे, वो भक्त भी मुझे अति प्रिय है। तो पहले हम लें जो सभी चीजों का आधार है, मनन। मननशील व्यक्ति परमात्मा को अति प्रिय है। अब यों तो मनन सभी कर रहे हैं। एक व्यक्ति को यदि कोई बिजनेस है तो वो उस बिजनेस का मनन चिंतन करता है, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का मनन चिंतन करता है, सैनिक अपने क्षेत्र का मनन चिंतन करते हैं, वैज्ञानिक अपने विषय का मनन चिंतन करते हैं। हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्यरत है वो उसमें मननशील होता ही है। लेकिन भगवान किस मनन की बात कर रहे हैं? वो मनन है ज्ञान का मनन। ज्ञान का मनन ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान का मनन मनुष्य के मन को, उसकी बुद्धि को दिव्यता प्रदान करता है। मनन से ही ज्ञान सूक्ष्म होता है, और हम यों कहें कि जो मनुष्य मनन करता है उसका ज्ञान उसके लिए शक्ति बन जाता है। मनन को हम ऐसे ही कहें जैसे हमारी पाचन शक्ति, जैसे भोजन हम खाते हैं, मुंह में उसको चबाते हैं, उसमें लार मिक्स होती है, स्लाइवा मिक्स होता है, वो नीचे पेट में जाता है, फिर पूरा सिस्टम है, पाचन तंत्र है, जिससे वो भोजन पचकर अनेक रसों में बदलते हुए रक्त में परिवर्तित हो जाता है, वो शक्ति बन जाता है शरीर की। ठीक ऐसे ही ज्ञान हम सुने और उसका यदि मनन करें तो वो भी पच जाता है, शक्ति का रूप ले लेता है, वो आत्मा की शक्ति बन जाता है। भोजन से बना हुआ रक्त और रस शरीर की शक्ति बनते हैं और ज्ञान के मनन के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है वो आत्मा की शक्ति है, जो आत्मा को शक्तिशाली और महान विचारों से संपन्न करती है। योग मार्ग पर चलने के लिए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मनुष्य के विचार बहुत महान होने चाहिए। महान विचार मनुष्य के व्यक्तित्व को निखार देते हैं। महान विचार छोटे विचारों से होने वाले उद्वेग को, फीलिंग्स को, पूरी भावनाओं को समाप्त कर डालते हैं। जो व्यक्ति महान बनना चाहता है, जो संसार को कुछ देना चाहता है, उसके विचार महान होने ही चाहिए। तो हम ज्ञान का मनन करें, हम मनन करें जहां से हम आए थे वहां का, हम मनन करें संसार के चक्र का, कैसे कैसे मुझ आत्मा ने इस संसार रूपी चक्र में, इस संसार रूपी ड्रामा में अपना पार्ट प्ले किया है, किस तरह मैं सतो प्रधान से सतो रजो और तमो स्थितियों में उतरती हुई नीचे आई हूं, और अब वो समय आ गया है जबकि मुझ आत्मा को शरीर छोड़कर वापिस अपने मूल वतन में ब्रह्म लोक में जाना है, इस समय आ गया है। चिंतन करें, आत्मा का चिंतन करें, परमात्म चिंतन करें, कर्म का चिंतन करें, योग का चिंतन करें, परमात्मा की रचना का चिंतन करें, तो ये चिंतन हमारे विचारों को श्रेष्ठ दिव्य भी बनाएगा और हमें निश्चिंत और निसंकल्प स्थिति तक भी ले चलेगा। तो पहली चीज चिंतन की है। ज्ञान एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और चिंतन उस ज्ञान को और रिफाइन कर देता है। जो लोग ये कहते हैं कि उनसे चिंतन नहीं होता, उन्हें भी जरा जान लेना चाहिए क्यों चिंतन नहीं होता। क्योंकि वो व्यर्थ के चिंतन में ज्यादा रहते हैं, वो अपनी शक्तियों को ज्यादा बोलने में या ज्यादा सोचने में, व्यर्थ की बातें सोचने में, पर चिंतन के बारे में सोचने में, दूसरों के अवगुणों के बारे में सोचने में नष्ट कर देते हैं। तो जिन्हें चिंतन का सुख लेना है उन्हें अपने को अंतर्मुखी कर देना चाहिए और ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। सवेरे उठते ही हम ये चिंतन करें, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मुझे कैसा होना चाहिए, उसका बच्चा होने के नाते मुझे कैसा होना चाहिए। तो ये चिंतन आपको बहुत गुह्यता की ओर ले चलेगा, आनंद की ओर ले चलेगा। इस चिंतन से मनुष्य के पास ज्ञान का बल आ जाता है और ये ज्ञान का बल ही मनुष्य को मान अपमान निंदा स्तुति में समान रखने की सामर्थ्य देता है। अन्यथा हम सब देखते हैं स्तुति सुनकर तो हर कोई प्रसन्न हो जाता है, फूल जाता है, निंदा सुनकर प्राय उनका उमंग ढीला पड़ जाता है, दुख होने लगता है, उदासी आ जाती है, निराश आ जाता है, कर्म करने की उमंग समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हमारे पास ज्ञान होगा तो हम महिमा सुनकर या निंदा सुनकर प्रभावित नहीं होंगे। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी हमें ये याद रहेगा कि ये अच्छे कर्म ईश्वरीय प्रेरणा और ईश्वरीय शक्ति से ही हो रहे हैं। तो जब उन अच्छे कर्मों की महिमा हमें प्राप्त होगी तो हमें ये याद रहेगा कि ये महिमा परमात्म अनुकंपा से प्राप्त हुई है, उसने हमें कर्म करने का बल दिया था, तो ये महिमा उसकी है, मेरी नहीं, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और इस तरह महिमा हमारे अहंकार को नहीं बढ़ाएगी और जब ग्लानि होगी इसे भी हम प्रभु इच्छा समझकर सहज स्वीकार करके समाप्त कर देंगे, ग्लानि से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि ग्लानि से कुछ अच्छी चीजें सीखकर अपने कदम तेजी से उन्नति की ओर बढ़ाएंगे। जो मनुष्य ग्लानि से अपनी कमियों को महसूस करके उन्हें दूर कर लेता है, ग्लानी उसके लिए वरदान बन जाती है। इसलिए हम अपने एटीट्यूड्स को बिल्कुल पॉजिटिव कर दें कि हमारी ग्लानी भी हो रही है अच्छाई के लिए, और जो लोग हमारी ग्लानी कर रहे हैं, जो लोग हमारी महिमा कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे अंदर के दृष्टिकोण में भी अंतर ना आए। बहुत बड़ी चीज है, कहना तो सहज है, लेकिन जो व्यक्ति ग्लानी करता है उसे मनुष्य अपना नहीं समझता, उसे शत्रु समझता है, उसे विघ्न डालने वाला समझता है, और जो महिमा करता है उसे अपना मित्र मानता है। परंतु वास्तव में जो ग्लानी कर रहा है वो हमें अधिक सावधान करता है, सचेत करता है कि तुम ये गलती ना करो, हमें अहंकार ना आ जाए, इसके लिए हमें उस सावधान करता है। तो हम अपने मन को अच्छी तरह समझा दें कि मनुष्य को जीवन में जहां महिमा प्राप्त होती है वहीं ग्लानी भी प्राप्त अवश्य होगी। ऐसा कोई मनुष्य संसार में आज तक पैदा नहीं हुआ जिसकी सदा महिमा ही हुई हो, ग्लानी कभी ना हुई हो। उसके साथियों ने ग्लानी भी की, उसी के साथियों ने महिमा भी की। महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, बहुत महिमा थी उसकी, लेकिन उसकी ग्लानी करने वालों की भी कमी नहीं थी। और जो भी महापुरुष हुए हैं, महावीर स्वामी को ले लीजिए, लोगों ने उनके त्याग तपस्या की महिमा भी बहुत की, तो उनकी ग्लानी करने वालों की भी कमी नहीं थी। जितने भी संसार में महान पुरुष होकर गए हैं वो महान इसलिए बने कि उन्होंने ग्लानी को सुनकर श्रेष्ठ कर्मों को छोड़ा नहीं, उन्होंने दूसरों की ग्लानी से प्रभावित होकर अपने सत्य पथ का त्याग नहीं किया। हमें भी ऐसा ही करना है। तो ग्लानी और महिमा प्रशंसा दोनों को हम स्वीकार कर लें, दोनों होंगी ही मन बना लें, और दोनों में ही विचलित न होने का संकल्प ग्रहण कर लें। ऐसी आत्माएं भगवान को सचमुच में बहुत प्रिय होती हैं। तीसरी बात कही है कि शरीर निर्वाह अर्थ, जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना, बहुत बड़ी चीज है। जो योग साधना के मार्ग पर अग्रसर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ग्रस्त में भी रहते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, काम धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं, सच्चाई से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उन्हें थोड़ा ही प्राप्त होता है, उस थोड़े में ही वो संतुष्टता पूर्वक गुजारा करते हैं। जो लोग पाप से धन कमाते हैं उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए उनका मन इच्छा और तृष्णाओं के पीछे भटक जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप कर रहे हैं वो योगी नहीं बन सकते, जो पुण्य कर रहे हैं, जो अपनी प्राप्तियों से संतुष्ट हैं, उनका ही चित्त स्थिर हो सकता है, और वही परमात्मा को बहुत प्रिय लगते हैं। जो इच्छाओं के गुलाम हो चुके हैं, इच्छाओं ने जिन्हें नचाया हुआ है, इच्छाएं जिन्हें चैन से सोने भी नहीं दे रही हैं, जो इच्छाओं के पीछे लक्ष्य विहीन होकर दौड़ रहे हैं, उन्हें भगवान प्यार नहीं करता, क्योंकि वो भी भगवान को प्यार नहीं करते। हम ही भगवान को प्यार नहीं करेंगे तो भला भगवान हमें प्यार कैसे करेगा। हम योग्य बने उसके प्यार में तो उसके प्यार के पात्र बन जाएंगे, और अपने जीवन की ऐसी धारणा बना लें कि हमें जो भी प्राप्त है उसमें तृप्त रहें। ठीक है, हम पड़ोसी को न देखें, पड़ोसी बहुत अच्छा भोजन कर रहा है, ओहो हम भगवान के मार्ग पर चल पड़े, देखो भगवान हमें अच्छा भोजन भी नहीं दे रहा है, ये नहीं। पड़ोसी बहुत अच्छे वस्त्र पहन रहा है, उसके घर के आगे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, हमें भी यदि ये संकल्प होता है कि हम अच्छे ज्ञान योग के पथ पर चले, हमारे घर के सामने कुछ भी नहीं है, लोग हमें छोटा समझते हैं, हमारे पास कार नहीं है, है तो बहुत अच्छी कार नहीं, स्टैंडर्ड की कार नहीं है, हमारी पोजीशन, हमारी शान बहुत कम हो गई है, ऐसा विचार करने वाले लोग कभी भी स्थिर चित्त नहीं हो सकते और न योगी बन सकते। योगी तो वही बन सकते हैं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को प्राप्त कर लें, अर्थात जिनके मन की स्थिति ऐसी हो जाए कि मानो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जैसे इच्छाओं का ज्ञान ही नहीं है उन्हें, तृप्त हो गए हैं वो अपने जीवन में, जो पहनने को मिल रहा है उसमें संतुष्ट हैं, जो खाने को मिल रहा है उसमें संतुष्ट हैं, जैसा रहन सहन है, जो साधन है उनमें संतुष्ट हैं। हम भी यदि योगी बनना चाहते हैं यदि परमात्मा से मिलन की हमारी तीव्र इच्छा है तो संतुष्टता का जीवन जिए। चौथी बात, रहने के स्थान में लगाव, ममता और आसक्ति से रहित होना। आप में से कई लोग जानते होंगे, सन्यासियों के लिए एक नियम पहले से ही बना दिया गया था कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी भी स्थान पर नहीं रहेंगे, वो शहर में नहीं रहेंगे, वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं चलेंगे और संतुष्ट रहेंगे। इसका कारण यही था कि मनुष्य जब लंबा समय किसी स्थान पर रहने लगता है तो उस स्थान के प्रति उसको ममता और आसक्ति हो जाती है और वो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता और वो स्थान भी उसके योग अभ्यास के लिए बाधक बन जाता है, क्योंकि उस स्थान के लिए उसमें ये भावना पैदा हो जाती है कि ये मेरा है। देखिए, मान लो एक सन्यासी जो अपना सर्वस्व त्याग कर जंगल में एक पेड़ के नीचे जा बैठा, अब उसको फिर इच्छा होगी कि बरसात है, सर्दी गर्मी पड़ रही है, एक कुटिया तो होनी चाहिए। वो एक कुटिया बनाएगा, पास में नदी बह रही है, उसको पानी मिल रहा है, पेड़ है, छांव मिल रही है, हवा मिल रही है, अब उसकी झोपड़ी बन गई। नेचुरल रूप से उसके मन में ये आ जाएगा, ये मेरी झोपड़ी है, अब कहाँ भटकता फिरूंगा, यहाँ गांव भी अच्छा है, भोजन भी ठीक ठीक मिल जाता है, मान सम्मान भी अच्छा प्राप्त है, इसलिए अब तो यहीं रहना चाहिए। और धीरे धीरे इस स्थान पर वो एक आश्रम बनाएगा, फिर बड़ा आश्रम बनाएगा, उसके शिष्य बढ़ेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगी और वो अब सन्यासी न रहकर एक गृहस्थी बन जाएगा। साधनाएं उससे कोसों दूर चली जाएंगी, त्याग और तपस्या का उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। जो समाज को प्रेरणा देने के लिए चला था, कुछ समाज सेवा, कुछ साधनाएं, परमात्म मिलन का अनुभव, योग की सर्वोच्च स्थितियों को प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर जो व्यक्ति चला था, वो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए भगवान को वो बहुत प्रिय हैं जो सर्वस्व त्यागी हैं, जिन्हें रहने के स्थान से भी आसक्ति नहीं है। आज यहां रहना है, कल वहां। आज रहने का बहुत अच्छा स्थान मिल गया, कल साधारण मिल गया। आज बहुत सुख सुविधाओं से भरी जगह मिल गई, कल बिना किसी सुविधा के बिल्कुल सिंपल स्थान मिल गया, उसमें भी वो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। तो हम सभी जो योग के मार्ग पर अग्रसर हैं, बहुत लाखों लोग जिन्हें भगवान ने स्वयं राजयोग सिखाया है, भगवान के द्वारा सिखाए गए राजयोग के पथ पर चलकर भी यदि कोई इसकी संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसे इन सब बातों पर पुनर्विचार करना चाहिए कि अवश्य ही वो व्यक्ति कहीं आसक्त हो गया होगा। जरूर इच्छाओं ने उसको घेर लिया होगा, जरूर ये हुआ होगा कि दूसरों को देखकर उसके मन में भी मान शान से रहने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई होगी, जरूर वो संसारिकता की ओर, भौतिकता की ओर बेहद रूप से आकर्षित हो गया होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य त्यागी नहीं बनेगा तब तक वो योगी नहीं बन सकता। इसलिए आओ हम सभी योग के मार्ग पर चलने वाले ब्रह्मावत्स, जो परमात्म पालना में अपना जीवन जी रहे हैं, जिन्हें रोज पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आता है, जो भगवान से सम्मुख बैठकर इसी तरह गीता ज्ञान सुनते हैं, वो त्यागी बन जाएं। कितना बड़ा भाग्य है, कोई गीता को पढ़ते हैं और कोई गीता ज्ञान सम्मुख भगवान से सुनते हो, कितना बड़ा अंतर है। भगवान के वाइब्रेशंस को अनुभव करते हो, कितना बड़ा भाग्य है। गीता का पाठ करना तो बहुत सहज है, लेकिन गीता की धारणा तब तक नहीं हो सकती जब तक हम परमात्मा से योग युक्त न हो, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप पर योग युक्त हुए बिना हमें सर्वशक्तिवान की शक्तियां ही प्राप्त नहीं होंगी, और जब तक आत्मा में शक्तियां नहीं आती तब तक धारणाएं नहीं होंगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें शास्त्रों में भी लिखी गई हैं, गीता में भी लिखी गई हैं, जिनकी हम चर्चा कर आए हैं, आगे भी करेंगे, जो मनुष्य को सुनने में वास्तव में ही बहुत प्रिय लगती हैं। और हम सब जानते हैं कि यदि उसे मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन शांत हो जाए, भरपूर हो जाए, तनाव से रहित हो जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर ले। पर चाहते हुए भी मनुष्य क्यों इन धारणाओं को नहीं अपना पाता, क्यों वो चाहते हुए भी क्रोध का त्याग नहीं कर पाता? वो समझता है कि विषय वासनाओं ने उसे अंधकार में ढकेल दिया है, जानते हुए रियलाइज करते हुए भी क्यों उससे मुक्त नहीं हो पाता? क्योंकि मन और बुद्धि निर्बल हैं, आत्मा ही निर्बल है। इसलिए जब तक सर्वशक्तिवान के ज्योति स्वरूप पर, जो उसका निराकार स्वरूप है, महाज्योति, अखंड ज्योति, जब तक उस पर मन बुद्धि को स्थिर नहीं किया, तब तक उसकी शक्तियां प्राप्त हमें नहीं होंगी। और जब तक शक्तियां प्राप्त नहीं हुई, तब तक इन श्रेष्ठ बातों की धारणाएं नहीं होंगी। तो आओ हम सभी इन सभी बातों को अपना कर परमात्मा के प्रिय बन जाएं, भगवान हमें प्यार करने लगे, उस प्यार में प्रसन्न होकर वो अपना सब कुछ हमें प्रदान कर देता है। और ऐसा सुंदर समय हमारे सामने है जब हम भगवान का सर्वस्व प्राप्त करके उसके समीप पहुंच जाएं, उसके समान बन जाएं, तो हम इस संसार के लिए बहुत कल्याण का काम कर पाएंगे।
ता ज्ञान देने के श्रेष्ठ कर्तव्य को निभाने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। ये वही गीता है जिसके अध्ययन से मनुष्य अपने जीवन में दैवी गुण ला सकता है। तो हमारे साथ साथ आप भी इस गीता का अध्ययन कर दैवी बनने का प्रयास करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव आते हैं तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति चैनल, शांतिवन, आबू रोड, तलेटी। हमारा पिन कोड है 307510। हमारा नंबर है
हम खुश नसीब उनको पाए। जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। Yeah.